लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मानव व्यक्ति की गरिमा पर हमला करने वाले मृत्यु दंड का प्रत्येक देश में कानूनी रूप से उन्मूलन किया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम सुसमाचार की खुशी पर चर्चा सुन रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक धर्म शिक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान विश्व में नवीन सुसमाचार के संबंध में प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम सुसमाचार की खुशी प्रकाशित की। 24 नवंबर सन 2013 को प्रकाशित किए गए अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस पूरी कलीसिया से यह आग्रह करते हैं कि हम सभी ख्रिस्तीय अपने जीवन में सुसमाचार के नए अध्याय की शुरुआत करें। वे कलीसिया को शिष्यों का एक समुदाय घोषित करते जो सदैव प्रेरिताई के कार्य हेतु बुलाई गई है। एवेंजेली गौडियम संत पापा फ्रांसिस के परम धर्माध्यक्षीय काल के विशेष मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जहां हम ख्रिस्तियों का गरीबों के प्रति कर्तव्य, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य कानूनी बातों के संबंध में अपने उत्तरदायित्व का जिक्र पाते हैं। वे सामाजिक प्राथमिकताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं। श्रोताओं, हमने अपने पिछले प्रसारण के अंत में कहा कि संत पापा फ्रांसिस अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में प्रेरितिक दृष्टिकोण से कुछ बातों पर विचार करते हैं जो कलीसिया की प्रेरिताई में नवीनीकरण लाने वाली गति में अवरोध उत्पन्न कर सकते या उन्हें कमजोर बना सकते हैं, या तो वे ईश्वरीय प्रजा के जीवन और उनकी गरिमा को खतरे में डालते हैं क्योंकि वे उन लोगों को प्रभावित करते हैं जो सीधे तौर पर कलीसिया के संस्थानों से संलग्न हैं और उसके सुसमाचार प्रचार के काम में शामिल हैं। श्रोताओं, मानवता समय के इतिहास में एक घुमाव मोड़ का अनुभव कर रही है, जैसे हम इसे विकास के रूप में बहुत सारे क्षेत्रों में देखते हैं। इसके संबंध में लिए गए कदमों के बारे में हम अपनी ओर से केवल प्रशंसा के शब्द कह सकते हैं, जिनके द्वारा लोगों के जीवन का कल्याण हुआ है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और संचार माध्यमों के संबंध में। वहीं हमें इस बात को याद करने की जरूरत है कि हमारे अधिकांश समकालीन दिन प्रतिदिन गंभीर परिणामों के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, बहुत से लोगों का हृदय भय और निराशा से जकड़ा हुआ है, यहाँ तक कि वे देश जिन्हें हम धनी देशों की संज्ञा देते हैं, जीवन जीने की खुशी निरंतर धूमिल होती दिखाई देती है। दूसरों के लिए सम्मान की कमी और हिंसा में वृद्धि तथा असमानता में बढ़ोतरी को हम साफ देख सकते हैं। हमारे लिए जीवन जीना अपने में कठिन लगता है, बहुधा थोड़े सम्मान के साथ इस बहुमूल्य जीवन को जीना। यह युगांतरकारी परिवर्तन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए त्वरित वृहद गुणात्मक परिणात्मक तीव्र और संचयी विकास के कारण हुए हैं, जिन्हें हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और प्राकृतिक जीवन में त्वरित गति से स्थापित करते हैं। हम ज्ञान और सूचना के वर्तमान समय में हैं, जिसने नई और अक्सर गुमनाम प्रकार की शक्ति को जन्म दिया है। श्रोताओं, हत्या मत करो, जैसे कि यह आज्ञा हमारे लिए एक स्पष्ट दिशा निर्धारित करती है जो हमें मानव जीवन के मूल्य की रक्षा करने को मदद करता है, वैसे ही आज हमें अर्थव्यवस्था के संबंध में बहिष्कार और असमानता को नहीं करोगे कहने की जरूरत है। ऐसी अर्थव्यवस्था हमें मार डालती है। संत पापा कहते हैं, यह कैसे हो सकता है कि एक बुजुर्ग गृह विहीन व्यक्ति जिसकी मृत्यु अभाव की स्थिति में होती समाचार का हिस्सा नहीं बनती। वहीं शेयर बाजार का दो अंक लुढ़कना समाचार का हिस्सा बनता है। यह बहिष्कार का एक मामला है। क्या हम भोजन फेंके जाने को सदैव सहन कर सकते हैं जबकि लोग भूखों मर रहे हैं? यह असमानता की स्थिति को उजागर करती है। आज सारी चीजें प्रतियोगिता के नियम से प्रभावित हैं और ऐसी परिस्थिति में योग्यतम ही अस्तित्व में बने रहते हैं, जहां शक्तिशाली शक्तिहीन पर पोषित होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि एक बड़ी जनसंख्या अपने में वंचित और दरिद्रता की स्थिति में अपने को पाती है, जहां उनके लिए कोई रोजगार नहीं होता, उनके लिए कोई संभावनाएं नहीं दिखती, वे अपनी सुरक्षा हेतु अपने को साधन रहित पाते हैं। श्रोताओ, संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में मानव खुद ही अपने में उपभोक्ता की वस्तु बन जाता है, जिसका उपभोग किया जाता और फिर फेंक दिया जाता है। हमने एक फेंके जाने की संस्कृति का निर्माण किया है जो अब फैल रही है। यह सिर्फ दुरुपयोग और शोषण नहीं है, बल्कि यह उससे भी बढ़कर एक अलग ही नया है। बहिष्कार का संदर्भ उस समाज का एक अंग होने से है जहां हम सभी निवास करते हैं। वे जो बहिष्कृत हैं केवल समाज में सबसे निचले तबके के नहीं, या वे हाशिए में रहने वाले नहीं, या अपने सामाजिक अधिकारों से बेदखल किए गए लोग मात्र नहीं हैं, बल्कि वे समाज के अंग भी नहीं समझे जाते हैं। बहिष्कृत शोषित नहीं, बल्कि समाज के बाहर किए गए बचे हुए लोग हैं। श्रोताओ, इस संदर्भ में कुछ लोग हैं जो ट्रिकल डाउन थ्योरी, ऊपर से नीचे बहने वाले सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं, जो मानते हैं कि एक मुफ्त बाजार द्वारा प्रोत्साहित आर्थिक विकास अनिवार्य रूप से दुनिया में अधिक न्याय और समावेशिता लाने में सफल होगा। यह विचार, जिसके तथ्यों की पुष्टि कभी भी नहीं हुई है, जो अपने में एक अपरिष्कृत और भोले भाले विश्वास को उन लोगों पर व्यक्त करता है जो आर्थिक शक्ति और प्रचलित आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। वहीं जो अपने में बहिष्कृत हैं, वे अब तक प्रतीक्षा करते हैं। एक जीवन शैली जो दूसरों का परित्याग करती है या उस स्वार्थी आदर्श के प्रति उत्साह बनाए रखने के लिए उदासीनता का वैश्वीकरण हो गया है। वहीं जो अपने में इन सारी बातों के बारे में जागरूक हुए बिना हम गरीबों की चीख पुकार पर करुणा महसूस करते हैं, अन्य लोगों के दर्द के लिए रोने लगते और उनकी मदद करने की आवश्यकता महसूस करते हैं, जैसे कि ये सारी चीजें किसी और की जिम्मेदारी थी, ना कि हमारी। समृद्धि की संस्कृति हमें मृत बना देती है। यदि बाजार हमें कुछ नया खरीदने का अवसर देती है तो हम अपने में अति उत्साहित अनुभव करते हैं। वहीं उन सभी लोगों का जीवन जो अपने में अवसरों की कमी के कारण ठिगने लगते, हमारे लिए सिर्फ एक तमाशा बन जाते हैं। वे हमें प्रभावित करने में विफल रहते हैं। श्रोताओं, इस परिस्थिति का एक कारण पैसे के साथ हमारे संबंधों में पाया जाता है, क्योंकि हम शांति से अपने जीवन में और अपने समाजों पर इसके प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं। वर्तमान वित्तीय संकट हमें इस तथ्य को अनदेखी करने में अग्रसर कर सकता है कि यह एक गहन मानवीय संकट में उत्पन्न हुआ, जहां हमने मानवीय गरिमा की प्रधानता को अस्वीकार किया है। हमने अपने लिए नए देव मूर्तियों का निर्माण किया है। हम प्राचीन सोने के बछड़े की पूजा को अपने बीच एक नए क्रूर रूप में पाते हैं, जो धन की पूजा और एक अव्यक्तिक अर्थव्यवस्था की तानाशाही है, जहां सही अर्थ में मानवीय जीवन के उद्देश्य का अभाव है। विश्वव्यापी संकट ने वित्त और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले उनके असंतुलनों को उजागर किया है। और उससे भी बढ़कर जहां हम मानव के लिए सच्ची चिंता की कमी को पाते हैं। मानव केवल अपने जरूरतों में से एक उपभोक्ता में सिमट कर रह गया है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम सुसमाचार की खुशी पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझ से ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझ से ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने सृष्टि काल में, जिसको 1 सितंबर से 4 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है, पारिस्थितिक आध्यात्मिकता का आह्वान किया है। पारिस्थितिक आध्यात्मिकता को जीने का अर्थ है सारी सृष्टि में सृष्टिकर्ता ईश्वर की उपस्थिति देखना। उन्होंने 6 सितंबर के ट्वीट संदेश में लिखा, सृष्टि का मधुर संगीत हमें पारिस्थितिक आध्यात्मिकता को जीने का आह्वान करता है, जो प्राकृतिक जगत में ईश्वर की उपस्थिति पर ध्यान देता सचेत रहता है कि सब कुछ की सृष्टि ख्रिस्त ने की है और कि उनके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। वैटिकन रेडियो के साथ एक साक्षात्कार में कजाकिस्तान के एकमात्र महाधर्म प्रांत के महाधर्म अध्यक्ष थॉमस पेटा ने कहा है कि मध्य एशियाई राष्ट्र में अगले सप्ताह होने वाली यात्रा कैथोलिकों और पूरे देश के लिए एक महान आशीर्वाद होगा। उन्होंने बतलाया कि अंतरधार्मिक सम्मेलन जिसमें वे भाग लेने वाले हैं, एक चिन्ह होगा जो ईश्वर को शांति के स्रोत के रूप में इंगित करेगा। अस्ताना के महाधर्म अध्यक्ष थॉमस पेटा ने कजाकिस्तान में पोप फ्रांसिस की प्रेरितिक यात्रा 13 से 15 सितंबर के पूर्व वैटिकन न्यूज से बातें की। एक विस्तृत बातचीत में महाधर्म अध्यक्ष ने संत पापा की प्रेरितिक यात्रा और कजाकिस्तान में कैथोलिकों की स्थिति पर प्रकाश डाला। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में संत पापा फ्रांसिस की यात्रा इटली से बाहर उनकी 38वीं प्रेरितिक यात्रा होगी, जिसमें वे विश्व एवं पारंपरिक धर्मों के नेताओं के 7वें सम्मेलन में भाग लेंगे तथा मध्य एशियाई राष्ट्र के छोटे कैथोलिक समुदाय के साथ अपनी निकटता व्यक्त करेंगे। कैथोलिकों की संख्या देश की कुल आबादी 19 मिलियन का करीब 1% है, जिसमें मुसलमानों की संख्या 70% और ख्रिस्तों की संख्या 25% है, जो खासकर रूसी ऑर्थोडॉक्स हैं। पोलैंड में जन्मे महाधर्म अध्यक्ष पेटा ने वैटिकन रेडियो के साथ साक्षात्कार में निम्नलिखित विषयों पर बातें की। आपके दृष्टिकोण से संत पापा फ्रांसिस के कजाकिस्तान में प्रेरितिक यात्रा का क्या महत्व है? इस सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा, संत पापा की प्रेरितिक यात्रा हमेशा एक ऐतिहासिक घटना होती है, खासकर ऐसे देश में जहां कैथोलिक छोटे झुंड के रूप में हैं। यह तथ्य 2001 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की यात्रा से प्रमाणित होती है, जिन्होंने देश में कैथोलिक कलीसिया की उपस्थिति का संकेत दिया और उसे विश्वास में मजबूत किया। उन्होंने कहा, इसलिए मैं मानता हूं कि संत पापा फ्रांसिस की यात्रा हम कैथोलिकों और पूरे कजाकिस्तान के लिए एक महान आशीर्वाद होगा। विश्व की नाटकीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान यात्रा वैश्विक स्तर पर शांति और सुलह की आशा रखती है। इस अंतरधार्मिक सम्मेलन तथा इसमें पोप की उपस्थिति और सहभागिता का क्या महत्व है? इसके जवाब में महाधर्माध्यक्ष ने कहा, विश्व और पारंपरिक धर्मों के नेताओं का सम्मेलन धार्मिक चर्चाओं का मंच नहीं है। मेरी राय में यह एक संकेत हो सकता है जो ईश्वर को शांति के स्रोत के रूप में इंगित करता है। यद्यपि राजनीतिकों का प्रयास जरूरी है, तथापि यह काफी नहीं है। शांति के लिए विश्वासियों की एक तेज प्रार्थना की आवश्यकता है। संत पापा फ्रांसिस का इस सम्मेलन में भाग लेना इसके स्तर को ऊंचा कर देता है और शांति तथा मानवता के कल्याण हेतु कलीसिया की चिंता को दर्शाता है। कजाकिस्तान में संत पापा फ्रांसिस को किस तरह देखा जाता है? महाधर्माध्यक्ष ने कहा, कजाकिस्तान के कैथोलिकों के लिए संत पापा फ्रांसिस कलीसिया के शीर्ष हैं, संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी। अतः बड़े आनंद और आशा के साथ संत पापा की प्रतीक्षा की जा रही है। यह गौर करने वाली बात है कि कजाक अधिकारियों के लिए संत पापा एक अधिकारी हैं। अतः सरकार पोप की यात्रा की तैयारी तत्परता के साथ कर रही है। कजाकिस्तान में कैथोलिकों की स्थिति क्या है? महाधर्माध्यक्ष ने कहा, कजाकिस्तान में हम धार्मिक स्वतंत्रता महसूस करते हैं, फिर भी हमारे देश में कैथोलिक होना अधिक आसान नहीं है। यही कारण है कि कैथोलिकों की संख्या 1% है। यहाँ कैथोलिक होने का अर्थ है परिपक्व निर्णय लेना। स्वतंत्रता के वर्षों में हमारे देश के लाखों लोग अपने ऐतिहासिक भूमि चले गए, उनमें से कई हजार संख्या कैथोलिकों की थी। इस समय कैथोलिक समुदाय अधिक अंतर्राष्ट्रीय बन गई है। कजाकिस्तान के कैथोलिक 10 विभिन्न देशों से आते हैं, जिसमें कजाक राष्ट्र के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। अब कोई हमें पहले की तरह जर्मन या पोलिश कलीसिया नहीं कह सकता। यूक्रेन की स्थिति पर सवाल पूछे जाने पर महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध एक बड़ी त्रासदी है। हम कह सकते हैं कि यह मानवता के शरीर में एक घाव है, पर हम मानते हैं कि संत पापा फ्रांसिस की यात्रा यूक्रेन में युद्ध के अंत और लंबे समय से इंतजार की जा रही शांति को प्राप्त करने के लिए एक बड़ा योगदान होगा। पोप फ्रांसिस ने पिछले दिनों अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और ओशिनिया से कुल 80 नए धर्माध्यक्षों की नियुक्ति की है, जो वैटिकन के सुसमाचार प्रचार विभाग द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भाग ले रहे हैं। 80 नए धर्माध्यक्षों का सेमिनार 5 सितंबर को रोम के परमाध्यक्षीय सेंट पॉल कॉलेज में कार्डिनल लुइस अंतोनियो तागले के नेतृत्व में क्रिस्टा के अनुष्ठान से शुरू हुआ, जिसका समापन 17 सितंबर को सेंट पेड्रोस महागिरजाघर में सेंट पापा फ्रांसिस द्वारा क्रिस्टा के अनुष्ठान से होगा। नवनियुक्त धर्माध्यक्षों के लिए सेमिनार की शुरुआत 1994 में हुई थी, जिसका उद्देश्य है हाल में नियुक्त धर्माध्यक्षों को स्थानीय कलीसिया का नेतृत्व करने के अपने मिशन शुरू करने के पूर्व चिंतन करने, अपने जीवन में गहराई प्राप्त करने और धर्माध्यक्ष प्रेरिताय पर ध्यान देने, समाध एवं प्रार्थना करने का समय देना। वैटिकन प्रेस कार्यालय एवं वैटिकन रेडियो के पूर्व निदेशक जेसुइट फादर फेडरिको लोम्बार्दी ने अपने 80वें जन्म दिवस एवं पुरोहिताय जीवन के 50 साल पूरा करने पर 6 सितंबर को पूर्वाहन 11 बजे रोम के त्रसपोन्तीना स्थित गिरजाघर में धन्यवादी क्रिस्ताग अर्पित किया। धन्यवादी क्रिस्ताग में वैटिकन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं वैटिकन संचार विभाग के कर्मचारियों ने भारी संख्या में भाग लिया। फादर लोम्बार्दी ने क्रिस्ताग का अनुष्ठान करते हुए उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मैं इस स्थान पर आप लोगों के साथ क्रिस्ताग अर्पित करने के लिए आप सभी का आभारी हूँ। विगत वर्षों में हमने कई बार इसी स्थान पर विभिन्न अवसरों में खुशी और दुख के साथ प्रभु से प्रार्थना की, एक समुदाय के रूप में अपने आप को प्रभु के सामने रखा, जो कलीसिया और दुनिया की सेवा सामाजिक संचार के माध्यम से करने के लिए बुलाए गए हैं, किंतु न केवल प्रार्थना करने बल्कि मित्रता के रिश्ते, सहयोग और हमारे बीच मानवीय एवं आध्यात्मिक एकात्मकता को जीने के लिए भी एक साथ आए। क्रिस्ताग समारोह का आयोजन वैटिकन संचार विभाग ने किया था। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।